أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. پیارے دوستو، السلام علیکم. ہم اپنے آج کے کاریکرم میں یاتری کی نماز سمبندھت مسئلوں کی دوسری شرط اور اس سے سمبندھت مسئلوں کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہم نے اپنے اس سے پہلے کے کاریکرم میں یاتری کی نماز سے سمبندھت پہلی شرط اور اس سے سمبندھت مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا. پہلی شرط یہ تھی کہ انسان جس سمے یاترا آرمبھ کرتا ہے تو اس کی یاترا کم سے کم 8%، جس کو ہم نے بتایا کہ 44 یا 45 کلومیٹر ہونا آوشک ہے. دوسری شرط جس کے بارے میں ہم آج بات چیت کریں گے وہ یہ ہے کہ جس سمے انسان اپنی یاترا کو آرمبھ کر رہا ہے، اس سمے یاترا کے آرمبھ کے ہی سمے اس کا کم سے کم ارادہ یہ ہو کہ کم سے کم وہ 8% یعنی 44 یا 45 کلومیٹر جائے گا. یعنی یاترا کے آرمبھ سے ہی اس کا یہ ارادہ ہونا نماز کے قصر ہونے کے لیے آوشک ہے. اگر یاترا کے آرمبھ سے یہ ارادہ نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ وشیش مسئلے ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کریں گے. اگر انسان ایک یاترا کو آرمبھ کرتا ہے، اس کا پہلے سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ 8% یعنی 44 یا 45 کلومیٹر جائے گا، اور یاترا کو آرمبھ کرنے کے بعد ایک نشچت دوری پر پہنچ جاتا ہے، اس دوری پر پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ ہی ہوتا ہے کہ اب یاترا جو کرے گا اس کو 4 یا 8% کرے گا، یعنی کم سے کم 4% جانا اور 4% آنا یا 8% پورا. تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دوری کے بعد جو اس نے یاترا آگے بڑھائی ہے، اگر وہ یاترا پوری کی پوری 8% ہو، نہیں 44 یا 45 کلومیٹر پوری کی پوری ہو، تو اس کی نماز قصر ہوگی. اور اگر 4 فرسخ جاتا ہے، یعنی 22.5 یا 22 کلومیٹر صرف جاتا ہے، اس کے بعد آنا دونوں ملا کے اگر 8% ہو جاتا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی. ایک مثال دو، بہت بات اسپشٹ ہو جائے گی آپ کے سامنے. جیسے کہ ہم مان لیجئے ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنے گھر سے یاترا پر نکلتے ہیں اور ایک وشیش استھان تک پہنچتے ہیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم 8% کی یاترا کریں گے، یعنی اس دوری بھر جائیں گے جہاں سے ہماری نماز قصر ہو جاتی ہے. وہاں پر ہمارا کوئی دوست مل گیا، اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم آگے جائیں گے اور ہماری یہ یاترا جو اب شروع ہوگی وہ اتنی دوری بھر ہوگی کہ ہم 8% تک پہنچ جائیں گے، یا 4% جانا ہمارا ہو جائے گا. تو اگر یہ یاترا 8% ہو جاتی ہے، یا 4% جانا اور 4% آنا ملا کے دونوں 8% ہو جاتا ہے، اور اس یاترا کے بیچ میں ہم اپنے وطن نہیں پہنچتے ہیں یا کسی ایسے استھان پر نہیں پہنچتے ہیں جہاں ہم کو 10 دن ٹھہرنا ہے، تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہماری نماز اس استھان کے بعد سے قصر ہو جائے گی، یا اگر لوٹتے بھی آ رہے ہیں تو ہماری نماز قصر ہوگی اور ہمیں ہر وہ نماز جو 4 رکعتی ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا ہوگی. اس کے بعد اسی میں جو یاترا کے لیے قصد ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے آرمبھ سے ہی 8% کا، تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاتری ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی یاترا کے پابند ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹا، بیٹی، نوکر یا سینک جو اپنے کمانڈر کے آدیش کا پالن کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی یاترا کا دیکھتے ہوئے ان کی یاترا مانی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو آرمبھ سے یہ پتہ ہو کہ ہماری جو یاترا شروع ہو رہی، یعنی اگر وہ بیٹا جانتا ہو کہ ہمارے ماں باپ جو جا رہے ہیں وہ 4% سے ادھک جائیں گے اور 4% آنا ملا کے 8% ہو جائے گا، یا 8% سے ادھک کی دوری ہم کو طے کرنا ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز قصر پڑھے. یہاں پر آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ ہے کہ وہ نماز وہ جو ہماری مسافت ہے وہ 8% ہو جائے گی تو نماز قصر پڑھے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو اس کو نماز پوری پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے اس کو پوچھنے کی بھی آوشکتا نہیں ہے. مثلاً اگر بیٹا جا رہا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کی جو یاترا ہوگی وہ 8% یا اس سے ادھک ہوگی، تو اگر معلوم ہے تو قصر نماز پڑھے گا، اور اگر نہیں پتہ ہے تو اس کو یہ آوشکتا نہیں کہ اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ ہم کہاں تک جائیں گے، ہماری جو یاترا ہے وہ 8% ہوگی یا نہیں ہوگی. جیسے اسی پرکار وہ سینک، उसको ये आवश्यकता नहीं कि अपने कमांडर से पूछे। हाँ, अगर पूछ ले तो ये मुस्तहब है, उसको पूछ लेना चाहिए। अगर नहीं पूछता है तो उसको अपनी नमाज़ पूरी पढ़नी होगी। इसके बाद जो मसला आता है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान यात्रा आरंभ करता है, उसको पता ही नहीं होता है कि हमको यात्रा कितनी दूरी करना है। जैसे ये अगर किसी का जानवर खो गया है, कोई चीज़ खो गई है, किसी बच्चे को ढूंढना है, तो इंसान अपने घर से निकलता है और यात्रा शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता है कि मुझे कितनी दूर जाना है। तो अगर हमारे फुकहा यहाँ पर ये मसला बयान करते हैं, अगर वो कहते हैं कि अगर इंसान को यात्रा के आरंभ से ही ये पता ना हो कि उसकी यात्रा कितनी है, तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी, भले ही वो 8 फरसख तक पहुँच जाए। लेकिन जब उसको एक निश्चित स्थान पर पहुँच गया, उसके बाद जो यात्रा करेगा, अब उसको पता चल गया इसके बाद जो यात्रा करनी थी, जब उसको मालूम है अपनी यात्रा की अवधि के बारे में, तो अगर उसके बाद यात्रा जो करनी है उसको, अगर वो 8 फरसख या 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना होती, तो वहाँ पर नमाज कसर पड़ेगा। इसी प्रकार अगर इंसान ऐसी ही स्थिति में, यानी उसको पता नहीं था हमें कितनी दूरी तय करना है थी, दूरी तय करते करते 8 फरसख या उससे आगे निकल गया, अब चूंकि जाने में तो उसको नहीं पता था, लिहाजा जाने में जितना भी जाएगा नमाज पूरी पढ़ेगा, कसर नहीं पढ़ सकता है। लेकिन जब वापस आ रहा है, अगर वापस आते समय वो किसी अपने वतन में ना पहुँचे, यानी बीच में अगर वतन ना पड़े या किसी ऐसे स्थान पर ना पहुँचे जहाँ उसको 10 दिन ठहरना हो, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि लौटते में उसको नमाज कसर पढ़नी होगी। ये दूसरी शर्त थी नमाज के कसर होने में। उसके बाद जो तीसरी शर्त ये है कि जब नमाज इंसानी कसर होगी, यानी 4 रकती नमाज को 2 रकत पढ़नी होगी, शर्त ये है कि इंसान जब यात्रा को आरंभ करे उसके बाद हद तरखुस तक पहुँच जाए। जब हद तरखुस तक पहुँचेगा उसी के बाद उसकी नमाज कसर होगी। यह हद तरखुस क्या है और इसकी सीमा क्या है, इसको हम आपके सामने अभी बयान करेंगे। हद तरखुस यहाँ पर हमारे फुकहा अलग अलग नज़रिया पेश करते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है। हद तरखुस के बारे में एक बात ये कही जाती है, हद तरखुस उस सीमा को कहते हैं जहाँ से हमें अपने शहर की अंतिम दीवार दिखाई न दे, या हमें अपने गांव की अंतिम दीवार दिखाई न दे, या उस स्थान तक पहुंच जाए जहां से उस क्षेत्र, उस शहर या उस गांव की अजान सुनाई न दे। अगर इंसान इतनी दूरी तक पहुंच जाता है कि वहां की दीवारें दिखाई देना बंद हो जाती हैं या वहां की अजान सुनाई देना बंद हो जाती है, तो ये हद तरखुस हो गया। और इसके बाद जब इंसान अपनी यात्रा मर होगा और नमाज पढ़ना चाहेगा, तो उसकी नमाज कसर होगी। हद तरखुस को अगर हम किलोमीटर में बयान करना चाहें, ये शायद तो इस प्रकार होगा कि ये किलोमीटर में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होती है जहाँ से हमारे हद तरखुस शुरू हो जाता है। यानी कहाँ से, जब हम अपने शहर की अंतिम दीवार से बाहर निकले, चाहे अगर हमारा शहर दीवार वाला है, अगर दीवार नहीं तो मोहल्ले के अंतिम घर से जब बाहर निकले, तो उसके बाद से 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता होगा, जब इंसान उसको पूरा कर लेगा तो हद तरखुस तक पहुँच गया है और वहाँ से उसकी नमाज कसर आरंभ हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ जो हमने बयान की कि हद तरखुस में शर्त ये है कि वो जो शहर से निकल रहा है, जिस गांव से निकल रहा है, उसके घर, उसकी सीमा दिखाई देना बंद हो जाए। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए हमारा शहर या हमारा गांव इतनी ऊंचाई पर है कि वो दूर दूर तक दिखाई देता है, मतलब मान लीजिए हमारा गांव पहाड़ी के ऊपर है, तो आदमी कितनी भी दूर चला जाए उसको दिखाई देगा, या हमारे घर की जो, हमारे शहर की जो बिल्डिंग है इतनी ऊंची ऊंची है कि चाहे इतनी दूर पहुंच जाए वो दिखाई देगा। जैसे अगर दिल्ली वाला कुतुब मीनार के पास रहता है तो बहुत दूरी पहुंच जाए तब भी उसको कुतुब मीनार दिखाई देगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए हद तरखुस कहाँ से आरंभ होता है? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं, अगर इंसान किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है या जिसके स्थान, जो क्षेत्र इतनी ऊंचाई पर है कि दूर दूर तक दिखाई देता रहता है, या उसकी बिल्डिंगें इतनी ऊंची हैं कि दूर दूर तक दिखाई देता रहता है, तो उसके लिए हद तरखुस की मात्रा वही होगी जैसे आम शहरों के लिए होती है। उसको आम शहर की मात्रा पर देखना चाहिए, यानी उसको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर हम अपने आम शहर में होते तो मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद हमको उसकी सीमा दिखाई देना बंद हो जाती, तो इस क्षेत्र में भी उसको 4-5 किलोमीटर ही माना जाएगा। या अगर आम बिल्डिंगें होती हैं, जैसे 2-3 मंजिला बिल्डिंगें होती हैं, अगर 3-4 किलोमीटर के बाद दिखाई देना बंद हो जाती हैं, तो अगर कोई 20 मंजिल 50 मंजिल इमारत है तो उसको भी इसी हिसाब से जोड़ा जाएगा कि मान लीजिए वो 2-3 मंजिला बिल्डिंग है, यानी 4-5 किलोमीटर के फासले के बाद उसकी हद तरखुस की मात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये तो वो मसला हो गया जब हमारा क्षेत्र ऊंचाई पर था, या हमारे क्षेत्र की जो बिल्डिंगें थी, जो घर थे, वो ऊंचाई या ऊंचे ऊंचे थे। अब अगर इसके उलट हो जाए, हमारा क्षेत्र घाटी में हो, यानी हम जैसे ही थोड़ी सी यात्रा आरंभ करें, एक पहाड़ की जैसे ही बगल में पहुँचे, दिखाई देना बंद हो गई, तो क्या जैसे ही हमने पहाड़ के बगल में पहुँचे, वैसे ही हमारी वो तरख़्ख़ुश शुरू हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि चाहे वो हमारा क्षेत्र ऊंचाई पर हो, चाहे हमारा क्षेत्र घाटी में हो, हर दो दोनों सूरतों में, हर दोनों स्थिति में हमको देखना ये होगा कि आम हालात में, आम स्थिति में हमारा घर, हमारा मोहल्ला या हमारा शहर कितनी दूर तक दिखाई देता है। तो जो आम लोगों के लिए मसला होगा, वही इन लोगों के लिए मसला होगा जो ऊंचाई पर रहते हैं, या उन लोगों के लिए मसला होगा जो घाटी में या गहराई में रहते हैं। तो जिस मात्रा में वहाँ पर उन आम लोगों की नमाज कसर होती है, उसी मात्रा में इन लोगों की भी नमाज कसर होगी। यहाँ पर एक मसला यह भी पेश आता है कि अधिकतर जिन शहरों, जिन गांवों में हम लोग रहते हैं, उसकी कोई दीवार नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा कि हद तरख़्ख़ुश की मात्रा वहाँ शुरू होती है जहाँ पर शहर की दीवार या गांव की दीवार समाप्त होती है। तो अगर यानी दीवार ना हो, शहर की दीवार ना हो, गांव की दीवार ना हो, तो हद तरख़्ख़ुश कहाँ पर माना जाएगा? तो कहा यह गया है कि जिस जगह पर, जिस शहर में दीवार ना हो, तो उसकी हद तरख़्ख़ुश की मात्रा ऐसे मानी जाएगी कि हम एक इतनी मिकदार पर, इतनी मात्रा पर पहुँच जाएँ जहाँ पर आम हालात में हमको उस शहर के घर दिखाई ना दें, या इतनी दूरी पर पहुंच जाएं जहां पर हमको उस शहर की अज़ान सुनाई न दे। अगर हमको उस शहर के घर और उसकी अज़ान सुनाई नहीं देती है, तो यहां से हमारी नमाज़ कसर आरंभ हो जाएगी, और हमको हर वो नमाज जो 4 रकती है, यानी जोहर, असर और इशा, उसको 2 रकत पढ़ना होगा। तो ये वो चीज़ें थी जो हद तरख़्ख़ुश से संबंधित थी, जहाँ पर हद तरख़्ख़ुश हमारा आरंभ होता है और जहाँ से हमारी नमाज़ कसर होना आरंभ हो जाती है। तो हद तरख़्ख़ुश किस जगह पर समाप्त होता है, किस जगह पर शुरू होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हर वो मुसाफिर जिसने जब यात्रा आरंभ की थी, तो हद तरख़्ख़ुश जहाँ पर पहुँचा था, वहाँ से उसकी नमाज कसर हो गई थी। अब वहाँ पर लौटने का मसला होता है, किसी यात्रा से वापस आ रहे थे, तो हमारी हद तरख़्ख़ुश कहाँ पर होगी, यानी हमारी नमाज कहाँ से पूरी शुरू होगी? तो अगर कोई यात्री जैसे अपनी यात्रा से वापस आ रहा है, तो जैसे ही वो ऐसे स्थान पर पहुँचेगा जहाँ से शहर की दीवारें दिखाई देने लगे, जहाँ से शहर की अज़ान की आवाज़ सुनाई देने लगे, वैसे ही उसकी नमाज पूरी शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी नमाज को कसर नहीं पढ़ सकता है। अगर यहाँ पर एक और बात, जो एक और मसला पेश आता है, वो ये है कि अगर इंसान किसी ऐसे स्थान पर यात्रा करे, किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उसका इरादा 10 दिन रहने का हो, तो उसके लिए हाँ, यहाँ फोका ये कहते हैं एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर वो यात्रा पर जा रहा है, तो वो अपनी नमाज पढ़ने में कुछ देर ठहर जाए, और इतनी देर ठहरे कि वो अपने मकसद तक पहुँच जाए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद नमाज पूरी पढ़े। उसको बीच रास्ते में नमाज कसर नहीं पढ़ना चाहिए। यानी अगर हम एक मिसाल दें, आपके सामने बात स्पष्ट हो जाए, मान लीजिए हमको अपने गाँव से, अपने शहर से निकले किसी ऐसे स्थान पर जाना था जिसकी दूरी उतनी ही थी, यानी 8 फरसख थी, हमारा इरादा भी वहाँ जाने का, और ये इरादा था कि वहाँ जाने के बाद हम कम से कम वहाँ 10 दिन ठहरेंगे। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि जिस समय इंसान ने अपनी यात्रा को आरंभ किया है और वो चाहता है कि वहाँ पर पहुँच जाए, तो भले ही हद तरख़्ख़ुश से गुजरने के बाद उसकी नमाज कसर हो जाती है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि ऐसे इंसान को ठहरना चाहिए, अपनी नमाज को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और ये कोशिश करना कि चाहिए कि जब वहाँ पर पहुँच जाए, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी नमाज पूरी पढ़े। तो ये वो मसले थे जो हद तरख़्ख़ुश से संबंधित थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शर्तें हैं जो नमाज में कसर होने के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया था कि जब नमाज कसर होगी, तो कम से कम उसके अंदर 8 शर्तें पाई जाएँ। हमने आपके सामने 3 शर्तों को बयान किया, 5 शर्तें और भी बाकी हैं, जिसको हम अपने अगले कार्यक्रम में आपके सामने अवश्य पेश करेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।